Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 488.
May, year 2001, my wife in the morning in Northwest Jamaat Khana of London. Yali Madad, Satgur Kahere. दिल माहे देवल पूजिए अने दिल माहे देव द्वार दिल माहे साया आपे वसे अने दिल माहे आपे दीदार रे भाई दिल माहे आपे दीदार मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो सॉरी मोमिदा हम लोग इस्माइली हैं कभी बैठ के एकांत में बैठ के कोई खलल ना होवे कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना होवे अपने दिल में सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में क्यों आया आदमी को अपने जीवन का स्टॉक लेना चाहिए हम जिस तरह से अपने बिजनेस का स्टॉक लेते हैं हर साल हर महीने कितना माल है कितना आया कितना गया हमारी जिंदगी का भी कुछ स्टॉक है और वो स्टॉक है हमारे गुनाह हमारी नेकियां हम इंसान हैं इंटेलिजेंट है खुदा ने हमें बख्शिशें दी हैं और इन बख्शिशों में सबसे बड़ी बख्शिश जो इंसान के पास है तो वो उसकी सोच विचार है हम जिसको इंग्लिश में नॉर्मली इंटेलिजेंस कहते हैं इंसान सोचने वाला जानवर है जानवरों के अंदर सोच विचार नहीं लेकिन इंसान में है और अपना राइट रॉन्ग समझता है पीरों के ज्ञान के अंदर हमें इस किस्म की बहुत सी बातें मिलती हैं अब मैं जो ये आपको कह रहा हूं कि हमें बैठ के सोचना चाहिए तो पीर के ज्ञान के आधार से आपको बोलता हूं कहो रे जीव तमें इस अगर दिन कहते हैं कहो रे जीव तमें किस कारण आया जी मुझे बताओ फिर कहते हैं कि तुम इस दुनिया में क्यों आए तो हमें पता लगेगा कि हम दुनिया में आए नहीं हैं भेजे गए किसी भी इंसान को पूछो कि तुम्हें पैदा होने से पहले पूछा गया था कि तुम हमको जन्म देवे बिल्कुल नहीं ना हमें इस दुनिया में आने के लिए पूछा गया और ना हमें पूछा जाएगा कि तुम्हें मरना है ये जन्म और मौत दोनों हमारे हाथ में नहीं है आप एक डोरा लो एक सिरा इधर से पकड़ो स्ट्रेच करो अगर ये दो स्ट्रेच आपके हाथ में है तो ये सारा डोरा आपके कब्जे में है हमारी जिंदगी के ये दो जो छेड़े हैं पैदाइश और जो मौत है तो इसके दरमियान में बाकी क्या है کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر بھی ہم کو خدا تعالیٰ نے تھوڑی اجازت دی ہے کہ اگر اس کو سٹرچ کیا ہے تو سیدھا ہے, ذرا اس کو نزدیک لیا تو ڈھیلا ہو جائے گا, یہ ڈورا ڈھیلا ہو جائے گا, ادھر سے یا ادھر سے گر جائے گا, اور زیادہ نزدیک آ جائے گا تو لوپ بن جائے گی. خدا نے ہمیں جو عقل دی ہے اس کے اندر سے بہت سی چیزیں ہم نکال سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, اور یہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے. ہر وہ آدمی کہ جو خدا کو مانتا ہے, ہندو, مسلمان, عیسائی, بدھسٹ وغیرہ, جو کہ بدھسٹ خدا کو نہیں مانتے, سوری میں نے خام خواہ نام لے لیا, جین بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں, لیکن باقی تمام مذہب جو خدا کو مانتے ہیں وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے. مگر وہ لوگ کے جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں. موت ہے وہ یونیورسل چیز ہے. خدا کو نہ ماننے والے بھی موت کو مانتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے خدا نے انسان کو دی ہوئی کہ جس کے لیے انسان اگر سوچے کہ مجھے اس دنیا میں سے ایک دن تو چلے جانا ہے, یہ میرا ٹیمپرری ابورڈ ہے, اس چیز سے پھر ہم کو کیا پتہ لگتا ہے کہ مجھے جانا تو ہے, تو پھر اس دنیا کی ہائے ہوئے کیوں, کیوں میں اپنی ساری زندگی خراب کر رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ جو میرے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. پیر کے ایک اور گنان کے اندر ایک بڑے اچھے طریقے سے یہی بات سمجھائی گئی ہے. پیر کہتے ہیں کہ جس جگہ تم کو رہنا ہی نہیں اس جگہ دل لگانے کی بات کیا ہے. میں چار دن ہوئے لندن میں آیا, آج میرا سفر ہے, میں افریقہ جا رہا ہوں. مجھے تو پتا نا کہ آج مجھے جانا ہے, تو اگر آج کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ ایسا کرو تیسا کرو, گھومنے جائیں گے پھرنے جائیں گے, تو میں کہوں گا سوری فلانے ٹائم پہ میری فلائٹ ہے, میں اس کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں, اس لیے نہیں کہ مجھے جانا ہے. اگر انسان کو یہ خیال رہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی, سافٹنیس پیدا ہوتی ہے. موت کی سمجھ آنے سے انسان کے دل کے اندر تیاگ کی, تیاگ یعنی کسی چیز سے رینونسیٹ ہونا, انگلش میں جو لفظ ہے نا رینونسیشن, کسی چیز کو چھوڑ دینا. جیسے کہ کسی آدمی نے شراب چھوڑ دی, کسی نے جوا چھوڑ دیا, لچائی بدماشی چھوڑ دی, اس طرح سے ہمارا دل اگر یہ ہمیں یاد ہوئے کہ مجھے مرنا ہے تو موت کی کے جو کانشسنس ہے اس سے ہمارا دل سافٹ ہوتا ہے. ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا کوئی ٹائم نہیں, ایسا لازم نہیں کہ آدمی 50 برس کا ہی مرے گا, ایسا لازم نہیں کہ 100 برس ہو کے پھر ہی مرے گا. ارے ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو موت کی کانسیپٹ ہے اور موت کی فلسفی ہے ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے, اس لیے کہ عبادت کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, انڈرسٹینڈنگ آف موت. میری ایک وائز ہے, میں نے ٹورنٹو کے ایئر ویز جماعت خانے میں کی تھی 85-86 میں. میں نے اس میں جماعت کو یہ بتایا, میری وائز کا ٹائٹل تھا پروسیس آف ڈیتھ, موت کس طرح آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ بند ہو گیا مر گیا, نہیں, وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے. ہارٹ بند ہونے سے کوئی آدمی مر نہیں جاتا, نہیں, اس کا جیو اندر ہے. ہارٹ بند ہو گیا, باہر کا کنیکشن ٹوٹ گیا بس, لیکن جیو ابھی تک اس کے اندر ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان کے اندر سرٹیفائیڈ ہو گیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی پیتھولوجیکل ڈیتھ ہو گئی, لیکن اندر جیو ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ پھر ریوائیو ہوتا ہے. بہت برس ہوئے, آپ میں سے جو دارالسلام والے ہیں ان کو پتا ہوگا ہمارے دارالسلام کے مین جامع خانے کے پاس ہی ودھوا آشرم ہے, ویڈو ہاؤس ہے. اس میں ایک بوڑھی بھائی بہت بڑی عمر کی گزر گئی, کوئی اس کا والی وارث نہ تھا جماعت کے سوائے, سرٹیفائی کر دیا, بھائیاں آ گئیں, اس کو نہلایا دھلایا, کفن دیا, چلو جی جنازہ اٹھایا, قبرستان لے گئے. یہ سارے بات کو لگ بھگ 24 گھنٹے نکل گئے, وہ گزر گئی اور قبرستان پہنچایا, اس کو 24 گھنٹے نکل گئے. مکھی کیشو جی کرسن کا زمانہ تھا, یہ میں بات کرتا ہوں 1949 یا 50 کے. اس وقت دارالسلام کا جو قبرستان تھا وہ کنارے دریا کے سامنے ہی تھا. چلو قبر میں بھائی کو اتارا گیا, تین چار لڑکے ساتھ تھے اندر, ایک لڑکا زور سے چلایا, زور سے چلایا, مکھی صاحب کی جھیری آئی, اس کا پاؤں ہلا. کہ جب منہ کھول کے دیکھا تو آنکھیں کھلی ہیں, ہم کدھر آئی ہیں, ارے قبر میں اتارا گیا ہے, اگر کبھی ایک یا دو منٹ نکل جاتے تو مٹی ڈالنے والے تھے بچے. پاؤں ہلا, وہ چلایا, منہ کھولا, ہم کدھر آئی ہیں, آنکھیں پٹ پٹانے لگی, باہر نکالے, واپس لے کے آئے, 6 مہینے اور جیوی. ابھی یہ جو موت ہے نا وہ بڑی روحانی چیز ہے. عام طور پہ ہم لوگ موت کا نام سنتے ڈرتے ہیں, موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, موت تو ایک نیکسٹ مسافری کی چالو کرنے کا ایک رستہ ہے. اور یہ موت کا خیال, موت کا پروسیس, موت کی فلسفی ہمیں بیت الخیال میں کام آتی ہے. موت کیا ہے؟ اس دنیا میں سے ہم دوسری دنیا میں جاتے ہیں, اور وہ لوگ کے جو عبادت کرتے ہیں, جو لوگ کے خدا کو یاد کرتے ہیں, جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے. غم, فکر, ڈر, بھے, خوف, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے دل. مولانا سلطان محمد شاہ زادہ فرماتے ہیں, ہمارا جو مومن ہے وہ مستانہ سی کی طرح, ایک بڑا زبردست لائن ہے, سارے جنگل کا کنگ بادشاہ, اس کو کسی کا خوف ہے, اس کو کوئی ڈر نہیں. مومن ایسا ہی دنیا میں گھومتا ہے. حقیقت میں مومن جو ہے وہ زمین آسمان کو اپنا سمجھتا ہے, وہ دنیا کو اپنی سمجھتا ہے, وہ آسمان کو اپنا سمجھتا ہے, چاند سورج ستارے خدا نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہیں. جس طرح سے ایک بچہ اپنے باپ کی ملکت کو خود کی ملکت مانتا ہے, ایسا ہی مومن جو ہے وہ ساری خدائی کو اپنی ملکت مانتا ہے. اور سچ بات ہے, یہ خدا کے یہ جو بندے ہیں ان کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی رمکڑے کی طرح, کھلونوں کی طرح چیزیں پسند نہیں. چھوٹا بچہ ہے, اس کو کھلونے دو, وہ راضی ہو جائے گا. یہی بیٹا 24-25 برس کا جوان بن گیا, اب اس کو ایک کھلونا دو تو سمجھے گا میری مسخری کرتے. انسان جب روحانی حالت کے اندر جوان بن جاتا ہے, سمجھدار ہو جاتا ہے, فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں. جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں آسمان زمین کے اندر, جو قدرت کی چیزیں ہیں, وہ اس کو سلام کرتی ہیں. اور گنان میں ہے کہ تینے دیو لوگ پرنام کرے, یعنی فرشتوں کا جو عالم ہے اس مومن کو سلام کرتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں. ہمارا جو یہ اسماعیلی طریقہ ہے اسلام کے اندر, یونیک طریقہ, ہم صوفی ہیں لیکن صوفی کہلاتے نہیں. اس لیے نہیں کہلاتے کہ صوفیوں کا جو ظاہری سسٹم ہے ہم اس پہ نہیں چلتے, لیکن صوفیوں کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ ہمارا ہے. اور حقیقت میں صوفیزم مولا مرتضی علی سے چلا. ابھی کا جو اسلام کے اندر جو مانا گیا صوفی طریقہ, وغیرہ سچ پوچھو تو ہر نبی کے زمانے میں صوفی پن تھا. اس کو بولتے ہیں مسٹکس. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ یوں کہا جاتا ہے کہ رموس ریاض نیاز یہاں نیاز کا مطلب یہ نیاز نہیں, یہاں نیاز کا مطلب ہے مہربانی خدا کی. تو یہ جو طریقے ہیں صوفی طریقے ہیں وہ ساری دنیا میں موجود ہیں اور ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہے, لیکن ہمارے طریقے میں ڈفرنس یہ ہے. عام صوفی جو ہے وہ دنیا کے اندر اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے اکیلے رہتے ہیں, اچھے کپڑے نہیں پہنتے, گرمی سردی کا خیال نہیں رکھتے, غربت میں غریبی میں رہتے ہیں, اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھاتے ہیں لیکن مست ہیں. ہمارے طریقے کے اندر ڈفرنس یہ ہے کہ ہم دنیا اور دین دونوں کو ساتھ رکھتے ہیں, لیکن دل ہمارا اپنے مولا کے ساتھ رہتا ہے. دست بکار یعنی ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں, دل بیار ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں, دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دولت بھی کماتے ہیں, غریب بھی بنتے ہیں, امیر بھی بنتے ہیں, یہ چیزیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی. اچھا کھانا ملا ہے تو بھی آمین, کبھی سوکھی روٹی مل گئی ہے تو بھی آمین, یہ ہمارا طریقہ ہے. اس کو غنا کہتے ہیں. غنا کا مطلب یہ ہے بے پرواہی, کیئر لیسنس. یہاں کیئر لیسنس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کو ریسپانسبلٹی دی گئی اور وہ اس کو بھلا دے وے, ناٹ دیٹ کیئر لیسنس. یہاں کیئر لیس ٹچ کا مطلب ہے کیئر فری, پرواہ نہیں, ملا تو ملا نہیں تو نہیں ملا. صوفی پن کا ایک بڑا اچھا طریقہ پیر نگنان میں پیشمس کہتے ہیں کہ آوے تو روزی نہیں تو روزہ, ایسا ایسا دھیان میرے شاست و دھرنا, یہ صوفی پنا ہمارا ہے. مال مل گیا مغرور نہیں ہوئے, غریب بیٹھے ہیں تو شکایت نہیں کی, جس حالت میں خدا نے رکھا ہے تو پھر کے وہ گنان میں کہ سوامی را جو راکھے تم رہی ہیں, یہ حالت صوفی پن کی ہے. اور ہمارا یہ جو طریقہ اسماعیلی مذہب کا جو ہے یہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ چلاتا ہے, کیونکہ دنیا خدا نے بنائی ہے, اس کے اندر نیکسٹ جنریشنز بھی آتی ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا ہے, اس لیے ہمیں کمائی بھی کرنی چاہیے. مومن سچا اسماعیلی کمائی کرتا ہے, مالدار بنتا ہے, دسوند دیتا ہے, مغرور نہیں بنتا, دل میں کوئی حسد نہیں, ویر نہیں. اگر کچھ خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو دل جلاتا نہیں, اچانک سے نقصان ہو گیا ہو گیا. اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں آرام سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے, کیا میں اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اوپر سچا ہوں, کیا میں پرومس کرتا ہوں تو میں پالتا ہوں, کیا میں دسوندی ہوں, کیا میں دعا برابر پڑھتا ہوں, کیا میرے دل میں حسد ہے. ان تمام چیزوں کا اپنے دل کو ٹٹولو کہ سچا اسماعیلی کون ہے. نیاز پیئے, پیالیاں بھر بھر کے پی ساری زندگی پیتے رہے. نیاز علی شاہ مابا فرماتے ہیں کاڈی ملے کے جماعت خانے میں مولانا علی شاہ پیر کے جومے میں تھے. اس وقت جب وہ پیر کے جومے میں تھے تو جماعت خانے میں یوں ہی آ جاتے تھے کہے بغیر. اس لیے مکھی کمڑیا کے بیچ میں, ایک سائڈ میں مکھی, رائٹ سائڈ میں, لیفٹ سائڈ میں کمڑیا, بیچ میں کرسی پڑی رہتی تھی. اور علی شاہ ماں باپ بہت دفعہ اس طرح بھی آئے ہیں کہ جماعت دعا پڑ رہی ہے اور مولانا علی شاہ پیری جومے کے اندر جماعت خانے میں انٹر ہوئے تو آ کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے جماعت کے ساتھ. جب دعا پوری ہو جاتی تھی اٹھ کے پھر کرسی پہ بیٹھتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ پیر علی شاہ ماں باپ نے خود نے دعا پڑھائی ہے, لیڈ کی ہے دعا, جھونی دعا. اگر آپ میں سے کوئی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں کچھ پرانی دعا تھی تو وہ تقصیدار بندہ سر تپا گنے گار, یاشا تو بخشی بخشن ہار, دعا تو پیر پڑھے بندو وینتی کرے. دعا پڑھانا پیر کا کام ہے اور علی شاہ ماں باپ دعا پڑھایا کرتے تھے. وہ آدمی جو بیٹھ کے دعا پڑھاتا ہے وہ اس وقت پیر کے جومے میں ہے, یعنی پیری جگہ پہ بیٹھا ہے. مکھی نے امر دے دیا, اب امر اس آدمی کے پاس ہے کہ جو دعا پڑھا رہا ہے, مکھی بھی اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارا سارا سٹرکچر سمجھنے جیسا ہے, امر کے اوپر ہے. तो अलीशा माँ बाप आए उस दिन न्यास का दिन था. वो जमाने में जुमेरात को न्यास निकलती थी थर्सडे नाइट. हकीकत ऐसा सच्चा यही है कि नाइट बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे वो दिन जुमे की रात है. उस दिन हकीकत में न्याज होता है. मुझे पता नहीं है कि ये जुमा कब से चालू हुआ. मेरी शायद मेरी पैदाइश के पहले हुआ होगा. लेकिन हमारे मजहब के तरीके जो हमें गिनानों में से मिलते हैं फरमान मिलते हैं न्याज का जो दिन है वो जुमे रात है. एनीवे मौलाना अली शाह माँ बाप आए कुर्सी पर बैठे फरमान किए स्टोरीज भी सुनाया करते थे. ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं कि आदमी कभी मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज है कि मैं बयान करूं तो रो पड़ू. अली शाह माँ बाप के फरामीन जो है इस तरह से बहुत समझने जैसे हैं. मौलाना अली शाह माँ बाप ने एक प्याली उठाई. जमात को कहते हैं जमात ये नूर है. यानी न्यास जो है वो नूर है. इसलिए गिनानों में भी लिखा है कि नूर पियो. न्यास नूर है. मौलाना अली शाह कहते हैं कि अगर तुम इसको सच्चे ईमान के साथ हाथ में रख के पहाड़ को कहो कि मेरे पास आ जा तो वल्ला माउंटेन चल के तुम्हारे पास आएगा. ये न्याज ऐसा है कि जिसका दिल काला है अगर उसमें ईमान पैदा हो जाए तो न्याज पीने से उसका दिल सफेद हो जाए. क्योंकि ये नूर है. और ये इमाम खुद अपने हाथ से बना के हमें देता है. तो नूर पीने से हमारे अंदर नूर पैदा होता है. ये तमाम चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं वो उसी जगह पे आता हूं वापस कि हमको बैठ के सोचना चाहिए. सोच विचार से ये चीजें समझ में आती हैं. मौलाना अली शाह माँ बाप के इस फरमान के साथ कि न्याज है वो नूर है और न्याज अगर पियो सच्चे दिल से तो दिल सफेद हो जाते हैं. यहां दिल सफेद होने का मतलब क्या? बदियां बुराइयां निकल जाती है. ये पाक करने जैसी चीज है. मिशनरियों की मेहमानी थी. मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शदातार बैठा है लहरें निकालता है. वो जमाना है कभी याद करता हूं तो दिल भर आता है. हर साल मौला आते थे. मिशनरियों की मेहमानी होती थी. हमको एक एक को पूछे बातें करे हिदायत करे वाज के तरीके बताए जमातों की हालत पूछे जमातों के लिए फरमान करे. हमारे एक मिशनरी खड़े हुए जाफर अली अब्जू उससे चार पांच किताबें लिखी हैं. भलवानी भंडोल का वो राइटर था. खड़ा हुआ हाथ बांध के जाफर क्या बात है? कहते मौला हमारे मिशनरियों के अंदर एक छोटी सी बात चल रही है. आप हमें खुलासा बताओ क्या है? मौला बहुत से लोग जब न्याज की प्याली हाथ में उठाते हैं क्या मांगते हैं पता नहीं. लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं और पीछे वाले लाइन के अंदर इंतजार करते हैं. या मौला हमें आप ऐसी दुआ बताओ कि न्याज पीते वक्त हम ऐसी दुआ मांगे कि सारी दुआएं उसमें आ जावे. बाबा फरमाया जब तुम न्याज की प्याली उठाओ बोलो या मौला मुझको हकीकती समझ दे. हकीकती समझ दे. मैंने अपनी आवाज इसी से उठाई कि हमारे अंदर जो खुदा ने सोच विचार रखा है उससे काम लेना चाहिए. हकीकती समझ अगर आ जाए सच्ची समझ अगर आ जाए राइट और रॉन्ग का फर्क आ जाए बुरा क्या है गुनाह क्या है अगर आ जाए समझ उसकी अच्छा क्या है नेकी क्या है उसकी समझ आ जाए हमारी सारी जिंदगी ही बदल जाए और इसके अंदर रूहानियत पैदा हो जाए. रूहानियत पैदा करना ही इस्माइली मजहब का काम है. इस्माइली मजहब ने यह तरीका जो है जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं हम सुबह उठते हैं 3:30 बजे उठते हैं कुछ पानी वानी पी के हाथ मुंह धो के हम अपनी इबादत में बैठते हैं, ये फरिश्तों का काम है और हम सब ने मौला के पास जाके इबादत ली है। इबादत वाले को तो हर वक्त दिल खुला रखना चाहिए, मौला के साथ उसका लेन देन होवे, डायलॉग चलता रहे सारा दिन, या मौला ये बात आ गई, मैं कुछ मुंझा गया हूँ, घबरा गया हूँ, मुझे रास्ता बता, वो आपको रास्ता बताएगा, या मौला मेरे लिए क्या अच्छा है वो तू बेहतर जानता है, मुझे बता, आप उसके साथ सारा दिन बातें करो। और इस तरह बातें करते 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 मैं आपको सच कहता हूं, एक ऐसा दिन आएगा कि आप उसकी आवाज सुनोगे इन कानों से, अंतर के कानों से नहीं, जाहिर के कानों से भी आप आवाज सुन सकोगे, और आपको ऐसा होगा क्या मौला इधर बैठा है, उसके साथ ताल्लुक पैदा करो। रूमी कहता है कि अल्लाह अल्लाह मी कुनी, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह भी शवी, अल्लाह बन जाओगे। फिर कसम खाता है ई सुखन हक, मैं तुमको सच कहता हूं, वल्ला अल्लाह भी शवी, सचमुच खुदा की कसम तुम खुदा बन जाओगे। यहां खुदा बन जाने का मकसद क्या है, हम खुदा तो नहीं बन सकते क्योंकि हमारा बदन जो है मेटीरियल है, लेकिन खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा कि उठते बैठते उसी की याद में रहेंगे। अब ऐसा आदमी कि जो हर वक्त मौला के साथ ताल्लुक रखा है वो झूठ बोलेगा, बदनजरी करेगा, किसी का माल खाएगा, गुनाह करेगा। मौलाना सुल्तान मुहम्मद कहते हैं तुम्हारी मां बैठी है, मां के बैठे हुए तुम कुछ बुरा काम करोगे? तो ये तरीके हैं, दिल माय देवल पूछिए, अपनी सोच विचार, यहां दिल से मतलब ये पंप नहीं जो अंदर चल रहा है, यहां दिल से मुराद इंसान का माइंड है, दिल माय देवल पूछिए। माइंड जो है वो तुम्हारे लिए पीर कहते हैं मंदिर है, वो जमात खाना है। हमारा दिल खुदा के नूर से भरा हुआ है। इबादत जो है वो ये रास्ते की है जो इस्माइलियों को मौलाना हजरत इमाम ने रहम करके बख्शिश दी है। दीनदारों इस चीज का लाभ उठाओ कि जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं। वल्ला बिल्ला आप दुनिया के अंदर कभी भी गमगीन नहीं होगे, उदास नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आपको दुनिया में कोई गम लगेगा ही नहीं। मौलाना हजरत इमाम के फरमान में है तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें दुख मिलेंगे, लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। ये इबादत के तरीके हैं, लेकिन हर रोज इबादत होनी चाहिए, सच्चे दिल से इबादत होनी चाहिए। एक घंटा जो इबादत का है 23 आवर्स उसका ध्यान रखो कि मैंने सुबह इबादत की है, मेरे से ऐसा काम ना हो जाए कि रात की मेरी इबादत टूट जावे। बदियां बुराइयां गुनाह हम सब जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, मगर हम लोग टेम्प्टेड हो जाते हैं और दुनिया के मोह माया में फंस जाते हैं, इसलिए हम फिर नुकसान उठाते हैं। मौलाना हज़रत इमाम का जो दीदार है वो आपके दिलों के अंदर मौजूद है। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से गुनाह से बचावे। मौला आपको अपना फरमान बरदार बनावे, वफादार बनावे। मौला रूहानी बख्शिश देवे, मौला हिम्मत और ताकत देवे, आफत बलाएं दूर करे, मौला नेक उम्मीदें पूरी करे, सेहत और तंदुरुस्ती देवे, आल औलाद रोजी रिज़क में मौला बरकत देवे, दीन और दुनिया में पनाह देवे, दीन और दुनिया की नेक उम्मीदें पूरी करे, सुखी आबाद बना। सेकेंड सेशन आफ्टर रिफ्रेशमेंट। याली मदद रजाए अला मेरे, मैंने आपको आवाज तो की है लेकिन कुछ बातें और भी कहना चाहता हूं। मजहब का कोई एंड नहीं है, खुदा का कोई एंड नहीं, और मतलब खुदा के साथ लगा हुआ है। मजहब जो है वो इंसान को इतना सुख देता है कि इंसान को पता नहीं इस बात का। दुनिया की मोह में, ममता में, टेम्पटेशन में हम लोग मजहब को भूल जाते हैं, और मजहब चखा नहीं इसके लिए उसके स्वाद का पता नहीं। लेकिन अगर मजहब चखा जाए, वंस टेस्टेड, तो इंसान फिर सब कुछ कुर्बान कर देता है मजहब के लिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद सदातार ने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है और बड़ी समझने जैसी चीज है। उस वक्त मौला की उम्र 10-12 साल की थी, और आपको पता है 8 वर्ष की उम्र में मौलाना सुल्तान मोहम्मद सदातार इमामत पे आए। उस वक्त की फोटो देखो, तखत नशीनी की फोटो, टोपी पहन के लड़के के रूप में बैठा है, और आजू बाजू में दाढ़ी वाले, पगड़ियों वाले, जब्बे वाले बड़े बड़े बूढ़े खड़े हैं, ये बीच में लड़का इमाम बैठा है। हमारा मजहब कैसा है कि ये सब जब्बे पगड़ियों दाढ़ियों वाले हाथ बांध के खड़े हैं लड़के के सामने, मगर वो लड़का नहीं है, इमाम है। नूर का जो संबंध है वो दुनिया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट है, और इमामत है वो नूर है। पीरी जमा है वो भी नूर है। इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैं एक स्टोरी बयान करूं सुल्तान मोहम्मद शाह की स्टोरी से पहले। मौलाना अली शाह 4 बरस इमाम रहे, और 1885 अगस्त की 17 को अली शाह माँ बाप गुजर गए, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तखत नशीन हुए 17 अगस्त 1885। सुल्तान मोहम्मद शाह 8 बरस के थे। उस वक्त अली शाह माँ बाप जब इमाम थे तो पीरी जोमा अपने लड़के को पीर शाहबुद्दीन शाह को दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे पीर शाह का शाहबुद्दीन शाह, और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि उनकी किताब द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, असल पर्शियन में है, जरूर पढ़ो। इनकम्प्लीट है क्योंकि शाहबुद्दीन शाह लिखते थे, 75 पेज हुए तो गुजर गए, तो ये किताब जो है वो कंप्लीट नहीं की आपने। मगर इस्माइली मजहब के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरह समझाए। तो अली शाह माँ बाप की उम्र में, उनकी हयाती में, पेशाबुद्दीन शाह एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तो पेशाबुद्दीन शाह के एक लड़के थे, क्योंकि यह इमामत और पीरी जमा जो है डेफिनेटली इमामत जेनरेशन में जाती है, भाई को नहीं जाती, या बेटे को मिले या पोते को मिले जेनरेशन में। लेकिन जो पीरी जमा है वो भाई को जाके वापस आ जाता है, या भाई की नस्ल में चले जावे, मगर वो भी वंश परंपरा है। तो पीर शाहबुद्दीन शाह का एक लड़का था आगा अबुल हसन शाह, उनकी 3 महीने की उम्र थी, जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। तो अली शाह माँ बाप ने पीरी जोमा ये 3 महीने के बच्चे को दिया, अभी 3 महीने का बेबी। आप तो मालूम है, आपने सब 3 महीने के बेबीज देखे। सैयद अबुल हसन शाह जब 3 महीने के बेबी थे तो जमात के मुखी कमड़िया अमलदार, उस जमाने में काउंसिलें नहीं थी, अग्रेसर थे, 8-10 ये बड़े लोग सरदार जमात के पगड़ियां जब्बे पहन के दो थाले लिए मेहमानी के पैरामनी के, तो पीर सलामत को सलाम करने के लिए गए, क्योंकि नवी अपॉइंटमेंट हुई तो जाना चाहिए उनकी बैत के लिए। जिस तरह हम इमाम की बैत करते हैं, हम पीर की भी बैत करते हैं। तो जमात के ये सब बड़े लोग सैयद अबुल हसन शाह के हुजूर में गए, तो बाहर उनकी जो आया थी वो खड़ी थी, तो उसने कहा कि पीर सलामत सोए हुए हैं, इसके लिए आप ठहरो। झूले में पीर सलामत सोए थे, 3 महीने के बैठे रहे। कुछ टाइम के बाद दौड़ी आई बाहर कि पीर सलामत जागे हैं, अभी तुम आओ। तो ये सब अंदर गए, पहले मुखी थे, मुखी साहब ने हसन भाई नाम था उनका, नमन किया, उसको देख के मुस्कुराए। जब इसने नमन किया तो छोटा सा हाथ उठाया, जब ये हाथ उठाया तो वो और भी नजदीक हुए, फिर हाथ से इशारा किया, इतना नजदीक आया कि छोटा सा हाथ उसकी पगड़ी पे रखा। बोले कुछ नहीं, लेकिन इसका मतलब यह कि मैं दुआ आशीष देता हूं। ये सब जितने 7-8-10 जने थे, सब ने सब नमन किया, पगड़ियों पे हाथ रखे, और वो जो थाले थे उन पे हाथ रखे। 3 महीने के बेबी ने ये जो बातें बनाई, ये क्यों था? पीरी जोमा था, और पीर का जोमा है वो नबी मोहम्मद का नूर है, इमामत का जोमा है वो अली का नूर है। हमें इन चीजों को जानना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि इनका दर्जा क्या है। तो ये जो सैयद अबुल हसन शाह थे, जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामत पे आए, तो उस वक्त पीरी जोमा सैयद अबुल हसन शाह के पास था। 3 महीने के बाद 6 महीने की उम्र में सैयद अबुल हसन शाह ने वफात पाई, और जो पीरी जोमा था वो सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने पास रख लिया। अब अजर इमाम के पास दोनों जोमे हैं, शाह का भी है पीर का भी है, और जब भी वो तालिका भेजता है तो अजर इमाम लिखते हैं पैटर्नल मैटर्नल ब्लेसिंग्स, पैटर्नल इमामत की, मैटर्नल पीर की जोमे की ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। तो मैंने ये बात इसलिए समझाई कि शरीर की बॉडी की जो एज है उसको नूर के साथ नो कनेक्शन, वो बेबी होते हैं तो भी उसमें नूर मौजूद है, वो इंटेलिजेंट। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने जमात खाने में आते थे तो ये एक स्टोरी सुनाई है। जमात सुल्तान मोहम्मद शाह छोटे थे, पर्शियन बोलते थे, कमर या हाजी उसका ट्रांसलेशन करते थे। हे जमात, एक आदमी मुसाफरी पे निकला। ये सारी स्टोरी कलाम इमाम मुबीन फर्स्ट पार्ट में है। मौला फरमाया एक आदमी मुसाफरी पे निकला। वो जमाने में लोग पांव से चल के जाते थे, चलते 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 थक गया, भूख लगी, तो ये ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले कि मैं शेड में बैठ के कुछ खा पी लूं। तो दूर से इसने देखा कि एक दरख्त है, झाड़ है, और उसके ऊपर हनी कॉम्ब लगा हुआ है, मध का पूड़ा लगा है। बहुत खुश हुआ, नजदीक आया तो इसने एक सामान नीचे रखा और ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ा, मध खाने लगा, मुंह उसने लपेट दिया मधुमक्खी से बचने के लिए। मौला लिखते हैं कि उस बेवकूफ ने आजू बाजू में इधर उधर देखा नहीं कि ये जो दरख्त है वो एक खड्ड के किनारे पे है, एक बड़ी डिच है उसके किनारे पे है, और उस नीचे डिच के अंदर एक ड्रैगन है, वो ऊपर देख रहा है और आदमी को देख के उसने मुंह खोला। दो चूहे, एक सफेद और एक काला, वो दरख्त के जो रूट्स हैं मूड़िए खा रहे हैं। मौला कहते हैं, हे जमात, वो मद खाने में ऐसा मस्त रहा कि इसने सोचा नहीं कि मैं किस कंडीशन में हूं। थोड़ी देर में एक हाथी निकला, मस्त हाथी, और उसने इस दरख्त को हिलाना शुरू किया। वो जो दो रैट्स थे माइस, उनके काटने से मूड़िए वीक हो गए थे। अब जो हाथी ने हिलाया तो झाड़ टूट गया, खड थी ये उसमें गिरा और ड्रैगन के मुंह में चला गया। मौला कहते हैं, हे जमात, तुम समझे इसमें क्या है? लाइफ का जो झाड़ है उसको रात और दिन दो सफेद और काले चूहे, दिन सफेद है रात काली है, वो लाइफ इंसान की जिंदगी को काट रहे हैं। एवरी डे इज लेसन, वी आर लूजिंग एवरी डे फ्रॉम आवर लाइफ। मद है वो दुनिया है, ये जो खड है ये कब्र है, और वो जो ड्रैगन है वो मलकुल मौत है। इस तरह बेवकूफ लोग, मौला कहते हैं, दुनिया के मद में मस्त है, पैसा है, माल दौलत है, बीवी बच्चे हैं, ऐश आराम है, बंगले हैं, मोटर है, भूल गया कि रात और दिन उसकी लाइफ को घटा रहे हैं। एवरी डे वी आर लूजिंग द स्पैन ऑफ लाइफ। और फिर जो हाथी है वो बीमारियां हैं, ऐसी कोई बीमारी आ जावे क्या हाथी वो मस्त हाथी धाड़ को हिलाता है, ऐसा इंसान वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गिर पड़ता है, मौत आती है, कब्र में गिर गया और मलकुल मौत उसको उठा लेता है। मैंने जो आवाज में स्टार्टिंग की कि हमें सोचना चाहिए, हमें थिंक करना चाहिए, दुनिया के लिए भी, दीन के लिए भी, और ये थिंकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ताला ने इंसान को ये बड़ी बख्शिश दी है कि इंसान थिंक कर सकता है, पास्ट के लिए भी, रिमेम्बरेंस उसको खुदा ने मेमोरी दी है, और फ्यूचर के लिए भी, वो पहले से देख लेता है, प्रीमोनिशन होती है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, खराब काम करने से ये रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करने से ये मिलेगा। तो इस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी को अगर सोच के निकाले और खुदा के बताए हुए रास्ते पे चले तो उसके दिल के अंदर एक किस्म का सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आदमी के अंतकरण के, इनसाइड ऑफ मैन, उसकी मेंटल कंडीशन के तीन स्टेजेस बताए हैं। उसको अरबी जबान के अंदर कहते हैं नफ्स। नफ्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैपिटल एस के साथ सेल्फ, सेल्फ मेरा अंतकरण। तो अल्लाह ताला कहता है उसके तीन स्टेज हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना। खाना पीना है, शराब, घूमना, कपड़े लता, यह नफ्स लवामा है, सॉरी नफ्स अम्मारा है। इसके अंदर आदमी मस्त रहता है और बहुत मुश्किल से वो सेकंड स्टेज का ख्याल करता है, नफ्स लवामा का। मगर जब आदमी सोच विचार करता है तो नफ्स लवामा सेकंड स्टेज में जाके वो राइट रॉन्ग की समझ पाता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इंसान की, बल्कि खुदा की सारी खुदाई के अंदर ये दो फोर्सेस जो है ना, राइट एंड रॉन्ग, राइट है वो गॉडली फोर्सेस है, लेफ्ट जो है, रॉन्ग जो है वो डेविलिश फोर्सेस है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है, राइट एंड रॉन्ग, इसकी समझ जब आती है तो ये नफ्स लवामा है, यानी वो बदियों बुराइयों से बचता है। खराब काम करने से बचता है, लॉस से बचता है, दुख से बचता है, तो इससे फिर वो ऊपर चढ़ता है। तो तीसरी स्टेज है नफ्स मुतमईना, सेटिस्फाइड सोल, उसके दिल के अंदर एक सुकून पीस ऑफ माइंड होती है, उसको दुनिया का कोई दुख हिला नहीं सकता। दुख आता है पी जाता है, दुख उसको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुख है एक्चुअली वो हमारे माइंड को टच करता है। हमारे माइंड के भी स्टेजेस हैं। जब हमको दुख लगता है तो हम रोते हैं, दुखी हो गए, सब्र निकल जाता है, टॉलरेंस निकल जाती है। लेकिन जो सेटिस्फाइड सोल्स हैं उनको दुनिया के दुख गम दुखी नहीं कर सकते। एक बात याद आई, बहुत बरस पहले मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्ता बॉम्बे से पुणे गए। हसन अली शाह अली शाह के जमाने के अंदर पुणे में वाड़ी बनाई थी, और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह भी जब भी बॉम्बे आते थे तो थोड़े दिन के लिए पुणे जरूर जाते थे। और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी वो जून जुलाई में 2 महीने पुणे रहते थे या महाबलेश्वर रहते थे। तो सुल्तान मोहम्मद शाह पुणे गए, उस वक्त पुणे में 1000-1200 की जमात थी। वो वाड़ी जो पुरानी थी वो पुराना जमात खाना अब नहीं रहा, उसको उसकी जगह बड़ा शानदार वाली शान डबल मंजिल का जमात खाना मिल गया। वो मौला आए तो मौला की जो गाड़ी अंदर आई, मुखी कमरिया अमरदार काउंसिल के मेंबर सब खड़े थे, लेफ्ट साइड में जमात खाना था, तो ड्राइवर आगे राइट साइड पे, सुल्तान मोहम्मद शाह पीछे लेफ्ट साइड में बैठे थे। और यह था कि जैसे ही मौला की गाड़ी खड़ी हो गए तो मुखी दरवाजा खोले, मौला उतरे, सामने जमा खाने जाए। लेकिन जब गाड़ी खड़ी हुई तो मौला घिसट घिसट के उस तरफ चले गए, ऑपोजिट साइड में। उस तरफ जब गए तो मुखी का मुड़िया भागे उधर, मौला का दरवाजा खोला, अभी जमात खाना इधर है, लेकिन मौला अपोजिट साइड में से उतरे, सब नीचे उतरे, हाथ में लकड़ी थी। ऐसा देखा तो दूर लगभग 100 यार्ड्स पे इमली का दरख्त था, उसके नीचे एक खालू बदख्शानी हाथ बांधे हुए मौला को देख रहा था, हंस रहा था। उसको कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रसी थी, सारे बदन में उंगलियां उसकी गल गई थी। लेप्रसियन है, बहुत खराब बीमारी है, जिस तरह बर्फ को रखो तो बर्फ कैसे आस्ते 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 गलती रहती है, ऐसा पहले उंगलियां गल जाती हैं पांव की हाथ की, फिर सारा हाथ गल जाता है, सारे बदन में ये रोग लगता है, अंदर कलेजा हार्ट पेट से सब आस्ते आस्ते गलते रहते हैं। उस जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका लेप्रसी का इलाज हो सकता है। उसको कोढ़ की बीमारी थी, कोढ़ सफेद है और काले है, दो किस्म का है। व्हाइट कोढ़ जो है वो इतना डेंजरस नहीं, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको बर्बाद कर देता है, तो बड़े बड़े सफेद सफेद चाटे पड़ जाते हैं बदन में, इससे मौत नहीं होती। लेकिन जो काला कोढ़ है वो आदमी की लाइफ को खा जाता है, और जगह जगह अंदर से पस निकलती है, पानी निकलता है, सख्त बदबू आती है, कंटेजियस डिजीज है। अगर उसके नजदीक कोई आदमी थोड़े टाइम रहे तो उसको भी पकड़ लेता है। तो ये दूर खड़ा था, सारे बदन कोढ़ से भरा था, चमकना छोड़ दिया, दूसरी तरफ उतर के सब उसकी तरफ जाने लगे, सारी जमात देख रही है, मुखी का मड़िया पीछे पीछे हाथ बांधे जा रहे हैं। अब वो देखता है कि मौला आ रहे हैं, ओ हो, ऐसा खुश हुआ, खुशी से नाचे, इतना खुश हो गए, बोला आते रहे वो खुशी से बेचैन होता रहे। थोड़ी दूर जाके बोला खड़े हो गए। सब उसको फारसी में पूछते हैं, तू कैसा है? कहते बहुत अच्छा। कोई तकलीफ है? कहते कोई नहीं, सारा बदन कोल से भरा है, दुखता है, शरीर गल रहा है, मौत नजदीक है। कहते मुझे कोई दुख नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं? कहते नहीं खुदा, कोई दुख नहीं। तू कैसा है? खुदा बहुत अच्छा। नाचे हंसे खुशी होने। मौला ने उसको दुआ दी, मौला चले आए, जमा खाने में आके फरमान किया, ये देखो मेरा खालू मुरीद है, कोढ़ की बीमारी है, लेकिन उसके दिल के अंदर इस चीज का कोई दुख गम नहीं, क्योंकि वो नूर को जानता है। ये है नफ्स मुतमईना जो कुरान में लिखा है, सेटिस्फाइड सोल। वो सेटिस्फाइड है। बदन क्या है? ए लंप ऑफ क्ले, मिट्टी का तोड़ा। मगर जो रूहानी आदमी होते हैं उनको ये दुनिया के दुख दुख नजर ही नहीं आते हैं। एक नॉर्मल चीज है, बस हो गया। लेकिन हम लोग जो दुनियादार हैं, अलीशा महबूब की याद फिर आई। मौलाना अलीशा जब पीरी जामे में थे तो रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे। बॉम्बे में जो वाड़ी थी जिसको हम नस्बत रोड पे आर्या हॉल कहते हैं, यहां साहब के बंगले थे। अभी तो मौला ने हुक्म दिया तोड़ के, वहां हॉस्पिटल बनी है, बिल्डिंग सोसाइटियां बन गई। इस तरफ जमात खाना है, राइट साइड में बंगले हैं, लेकिन सेंटर में एक फाउंटेन है, फवारा है, पानी का राउंड सेंटर में फवारा है और पानी का वो निकलता है, उसमें से शावर निकलती है। हजरत इमाम ने कहा कि इसको तोड़ना मत, अभी भी रखा हुआ है, लेकिन अभी रेती से उसको भर दिया है, पानी नहीं है। तो अलीशा मां बाप रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे और इस फाउंटेन के अंदर खड़ा रह गए, कमर तक पानी में। मौलाना अलीशा मां बाप खड़े रह गए और 5 बजे तक आंख बंद करके 3 घंटे रोज खड़े रह गए। फिर जो मथा, फिर 5 बजे जब ही बंदगी पूरी हो गई, अलीशा मां बाप बाहर निकले, बंगले पे जावे, कपड़े बदले और इधर जमात नियाज घटपार पी ले, तो 5:30-6 बजे सारी जमात नीचे आ जावे, जमीन पे बैठ जावे। अलीशा मां बाप उतरे और ये फाउंटेन की जो दीवार है उधर बैठ जावे और उस वक्त दीदार देवे, दुआशीष देवे। तो लोग फिर दीदार लेके दुआशीष लेके अपने अपने काम पे जावे। एक दिन गर्मी के टाइम में सूरज जल्दी निकल आता था तो बिल्कुल रोशनी हो चुकी थी। अलीशा मां बाप नीचे आए, वो पहाड़ के ऊपर बैठ के जमात को दुआशीष दी और फिर ऐसा ऊपर देखा। ऊपर जब ही देखा तो सारी जमात ऊपर देखती है, हे जमात देखो ये 3 पंछी हैं, 3 बर्ड्स हैं, ये जा रहे हैं, एक के पीछे दूसरे हैं, फॉलो कर रहे हैं 3। मौला कहते हैं ये जो पहला पंछी है उसकी मिसाल है मेरे मोमन की, वो मेरा मोमन है। दूसरा जो है वो दुनिया है और तीसरा है वो दुनियादार है। मेरा मोमन आकबत की तरफ जा रहा है और दुनिया उसके पीछे भागती है, लेकिन वो दुनिया के हाथ नहीं आता। और दुनियादार जो है वो दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उसके हाथ नहीं आती। हम लोग दुनियादार दुनिया चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, और खासतौर पे आज की दुनिया के अंदर हमारे अंदर ग्रीड बहुत हो गया है। हर आदमी का एक ही एम है, पैसा बनाओ, लुच्चाई से बनाओ, बदमाशी से बचाओ, फ्रॉड से बनाओ, कुछ भी पैसा बनाओ। फिर पैसे से क्या मिले, एक मर्सिडीज गाड़ी होवे, मिलियन डेढ़ मिलियन का बंगला होवे, नौकर चाकर होवे, क्या मिला इसमें? पैसा ज्यादा होने से मेंटल बर्डन बढ़ गया, पैसा ज्यादा होने से माइंड इसमें रह गया कि कहां इन्वेस्ट करूं कहां न करूं, जरा सा भी नुकसान होता है तो दिल धड़कने लगता है, उसने तो दुख ले लिया पैसा लेके, तो यानी मन की शांति निकल गई और पैसे के अंदर पड़ा रहा। कभी कभी मैं वाजों के अंदर ऐसी पर्सनल बातें भी कर लेता हूं, मैं रोज जाता हूं दरखाना बर्नबी में वैंकूवर के अंदर, ब्यूटीफुल जमात खाना है, इसका पैटर्न भी मौलाना हाजर इमाम ने खुद ने बनवाया। एक दिन मैंने गाड़ी पार्क की, नीचे उतरा तो एक मर्सिडीज गाड़ी आई इधर खड़ी हुई, वॉलंटियर को बुलाया, इस सवा $5 मुखी साहब के डे सताड़े जी बख्शाम नीजा, और फुर फुर करके खुद की गाड़ी लेके चला गया। मैं देखता रहा, मालदार आदमी है, $5.25 क्या है, बादशाह $5 की नहीं थी, उसका बिहेवियर देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मालदार आदमी है, थोड़ा दुख आया होगा, सतारा बख्शवाने के लिए $5.25 दिए, मैं खुद तो आया नहीं, खुद चला गया। अभी ऐसे आदमी का सतारा पूरा होवे नहीं होवे, दिनदार जमात को दुखी करके गया कि जमात खड़े होके उसके लिए दुआ मांगे, खुद चला गया, कहा गया, अल्लाह जाने। खुद तकलीफ लेके इबादत करो, बंदगी करो, जमात को दुखी ना करो। वो लोग के जो सतारा बख्शवाते हैं वो जमात को दुखी करते हैं। अपनी तस्बीहां निकालो, ये प्रथा हमारे अंदर नैरोबी से शुरू हुई, आज से कुछ 30 बरस हुए, 25-30 बरस नैरोबी में सतारा चालू था। किसी आदमी को तकलीफ हुई, मुखी साहब को कहा मुझे सतारा डालना है, हमारे तरीकत में हमारी ट्रेडिशन ये है कि एक सतारा होए तो दूसरा सतारा नहीं हो सकता उसके साथ, अनसिल ये सतारा पूरा होए तो नवा दूसरा सतारा हो सकता है। तो उसने कहा कि मुखी साहब ये मुझे ये तकलीफ है, मुखी बोले ऐसा करो मैं तुम्हें सतारा बख्श देता हूं। ये मुखी साहब की भूल थी, उसने एक नई प्रथा डाल के अपने मजहब की ट्रेडिशन को बिगाड़ दिया, वो तो देके चला गया, वो छूट गया, लेकिन मुखी साहब की ये चीज पक्की हो गई। अब सब जगह देखो सतारा बख्शवा लो, सतारा बहुत बड़ी चीज है। एनीवे मैं इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाना चाहता, तो बात क्या होती है कि सारी जमात को खड़ा होके उस आदमी के लिए दुआ मांगनी पड़ती, वो तो चला गया या घर पे बैठा है, और हम सारी जमात खड़े होके उसके लिए मांगे, ऐसे सताड़े कबूल नहीं होते। इसके लिए इमाम ने हुक्म किया कि बरस में सारी दुनिया की जमात में यह हुक्म है कि बरस में 2 सताड़े जमात के डालो। तो जमात में वो बच्चे जो मां के खोड़े में बैठे हैं सोए हैं वो भी शामिल हो गए उसमें, ये सताड़ा उस बच्चे की तरफ से भी है। एवरी स्माइली, जिस काम की जमात है उस जमात के अंदर हर एक स्माइली के लिए वो सताड़ा, जो जमात का सताड़ा है, बरस में 2 सताड़े होते हैं, हर इस्माइली फैमिली उसमें अपने घर से कुछ न कुछ मेहमानी लेके आओ, सताड़े में शामिल हो 7 दिन तक। ये दुनिया और दीन की दोनों तरह की दुख तकलीफ मुसीबतें बलाएं दूर करने के लिए है, सारी जमात की तरफ से है। फिर भी ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग जमाती सताड़े के अंदर भी आके कहती है सताड़ा बख्शवा दो। हमारी जमात में इतनी इग्नोरेंस है, 95% कहूं तो भी शायद पूरा नहीं हो गए, हार्डली 1-2% इस्माइली हैं कि जो अपने मजहब को जानते हैं, और हमें अपना मजहब जानने के लिए टाइम नहीं है, शौक भी नहीं है। थोड़े थोड़े लोग हैं, अच्छे लोग हमारी जमात में चौकस हैं, हमारी जमात में अच्छे अच्छे मोमन्य हैं, हमारी जमात में फरिश्ते जैसे आदमी हैं, लेकिन माइनॉरिटी है, बहुत छोटी माइनॉरिटी, वास्ट मेजोरिटी हमारी जमात की है ना इग्नोरेंट है। ہمیں ٹائم نہیں ہے اپنے مذہب سمجھنے اور جاننے کے لیے. اے مومنو, اپنے دکھوں کے لیے دکھ اٹھاؤ, اپنے دکھوں کے لیے دکھ اٹھاؤ. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جو دکھ ہیں وہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے, اس لیے کہ تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں. رسول پاک کی حدیث میں یہی ہے. نبی کا ایک صحابی تھا, 10 برس نبی کا وہ سیکرٹری کے طور پہ کام کیا, اس کا نام تھا انس بن مالک. وہ بیمار ہو گیا, بخار آیا, بدن تپ رہا تھا. نبی کو پتہ لگا تو حضور اس کو دیکھنے گئے. اے انس کیا ہے؟ سرکار بخار ہے. حضور فرمایا شکر کرو, بخار جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا ہے. ہر گناہ اس کی سزا تو ملنے والی ہے, لیکن خدا رحم کر کے چھوٹی سزا دے دیتا ہے. دکھ جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن دکھ خدا کبھی نہیں دیتا. ایک اچھا آدمی کسی کو دکھ نہیں دیتا, تو وہ مولا تو رحیم و کریم ہے, وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا. ہر دکھ میں اللہ کہتا ہے تمہارا ہاتھ, ہر دکھ میں. تو جب یہ دکھ آوے تو راضی خوشی سے قبول کرو, راضی خوشی سے, تو خدا خوش ہوتا ہے. میں نے تمہیں سزا دی, تم اس پہ خوش ہو گئے, خدا بہت راضی ہوتا ہے, دکھ گھٹ جاتا ہے. دکھ کو قبول کرنے سے دکھ گھٹ جاتا ہے. یہ چیز ہماری آتما کو, ہماری سول کو انہینس کرتی ہے, یعنی طاقت دیتی ہے. دکھ کو قبول کرنے سے روحانی شکتی بڑھتی ہے, دکھ کو قبول کرنے سے گناہ گھٹ جاتے ہیں, نیکیاں عبادت بڑھ جاتی ہے. دکھ کو قبول کرنے سے مولا کی فرمان برداری ہے, کیونکہ سزا اس نے دی ہے. ہمارے گناہ کی سزا وہ جج ہے, اس نے دی ہے, اور اگر ہم قبول کر لیتے ہیں اس کو راضی خوشی سے تو وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی فرمان برداری ہے. دکھ بری چیز نہیں, اور دکھ کو قبول کرنے سے دکھ گھٹ جاتے ہیں. پھر بھی اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں تو بھی دکھ گھٹتے رہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں پلر ہیں عبادت کی, عبادت کے دو پلرز ہیں. ایک یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اے مولا تو میرا رب ہے, پالنہار ہے, میرے گناہ بخش دے. دوسرا یہ ہے شکر الحمدللہ, کسی بھی حالت میں, آدھی روٹی ملی تو بھی شکر, آخری روٹی ملے تو بھی شکر, نہیں ملے تو بھی شکر, کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ روحانیت ہے, یہی صوفی پناہ ہے. آوے تو روزی, نہیں تو روزہ, ایسا دھیان میرے شاہ سو دھرنا. تو اگر انسان دکھوں کو قبول کر لے, دکھوں کی معافی مانگے, وہ پروردگار اتنا رحیم ہے, ساری دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کرو اور اس کے جو پریم ہے, ماں کی ممتا, اس کو ایک یونٹ میں لے کے آؤ, تو بھی خدا تعالی کی رحم پنا جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. خدا اتنا رحیم ہے, تو خدا کی اس رحمت کا لابھ اٹھاؤ, گناہوں کی معافی مانگو, اپنے دکھوں پہ صبر کرو, شکرانہ ادا کرو, اور اس کو بولو یا مولا یہ مجھے تکلیف ہے, میں نے آج صبح نہیں کہا, اس سے بات چیت کرو, ڈائلگ چالو کرو اس کے ساتھ, سارا دن اس کو یاد کرتے رہو. فرشتوں میں خدا بیٹھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, خدا نے کہا کہ دنیا میں جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں, وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں, وہ مجھے ایک دفعہ یاد کرتے ہیں میں ان کو 20 دفعہ یاد کرتا ہوں. امام سلطان مجھ سے فرمایا کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ تو میں 20 قدم تم کو سامنے لینے آؤں. اس کی محبت اتنی زیادہ ہے, اس کا رحم اتنا زیادہ ہے کہ ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی خدا نہ کرے کوئی دکھ آیا تو پہلی چیز سمجھ لو کہ میری کچھ بھول ہو گئی, اس لیے بیٹھ جاؤ, استغفر اللہ کے 40 دانے نکالو, या मौला मेरे कुछ जरूर भूल हुई है, तू पाक है, तू दुख नहीं देता, लेकिन मैंने कुछ गुनाह किया है कि ये दुख मुझे आया। तू परवरदिगार रहीम है, मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, अब मेरी मदद कर, दुख घट जाएगा। एक बात याद रखना, गुनाह हो गया तो वो जीरो तो नहीं बनेगा, गुनाह की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, मगर एक बात हो सकती है कि खुदा 100 का 1 बना दे, एक पाउंड की सजा एक पेनी में बन जावे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन गुनाह की सजा तो है ही, ये लॉ ऑफ कर्मा जो है सारी खुदा की क्रिएशन के अंदर मौजूद है, कुछ भी काम करेंगे उसकी सजा है। मैंने अगर किसी आदमी को देख के अपने दिल में बदमाश, ये है, ये चीज भी गुनाह में लिखी गई, छोटी से छोटी चीज। अल्लाह कहता है कि मस्टर्ड सीड, राई के दाने जितनी भी तुमने नेकी की है तो बर्बाद नहीं होगी, राई के दाने जितना भी तुमने गुनाह किया है वो भी बर्बाद नहीं होगा, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। किसी के लिए अपने दिल में बुरा ख्याल ना करो, किसी की गैर हाजिरी में उसकी गिबत ना करो, बुरा मत बोलो, किसी को अपने से नीचा मत समझो, किसी के लिए भी अपने दिल में बुराई नहीं होनी चाहिए, और अपने जीवन को पाक बनाने की कोशिश करो, मौला मददगार बनेगा। मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह 82 इयर्स की मेरी एज है, मैं 69-70 इयर्स से वाजे करता हूं, हजारों भाइयों को मिला हूं, इस्माइलियों को भी मिला हूं, नॉन इस्माइलीज को भी मिला हूं, हजारों फैमिलीज मेरे सामने मेरी याद में मेरी मेमोरी में है। मैं सारी दुनिया में घूमता रहा हूं, दिनदारों में आपको सच कहता हूं, हमारी जमात, मैं दुनिया की बात नहीं करता, लेकिन हमारी जमात में मोस्टली लोग जो है बेदरकार हैं, बेदरकार हैं, और हम दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, जमात खाने आते हैं ऐसे रहते हैं। मेरी तो बैठक मौला की रहमत से मुखी कमलिया के इर्द गिर्द होती है, पहली लाइन में। मेरी मोस्टली आदत है मैं दुआ में आंखें बंद कर लेता हूं, उधर देखता हूं जहां सजदा करता हूं। ये रसूलुल्लाह का हुक्म है कि नमाज में अपनी नजरें जिधर सजदा करते हो ना उस जगह रखो, इधर उधर मत देखो। लेकिन जब गिनान होते हैं, फरमान होते हैं, तो मैं जमात को देखता भी हूं, जमात में ऐसे लोग बस बैठे रहते हैं, बदन इधर है लेकिन मन बाहर है। कई लोग पंजा तक नहीं देते, सजदे नहीं करते, इसलिए नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए मैं दुआ मांग के कहता हूं कि मौला उनका ईमान ज्यादा करे, अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग दुआ में ध्यान नहीं देते, बैठे रहते। अब ये चीजें जो मैं आपको सुपरफ्लूअस चीजें हैं रूहानियत के नजर से, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमको बैतुल ख्याल में अड़चन पैदा करती हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, हमारी दुनिया, हमारी शरीयत, हमारी नॉर्मल लाइफ पूरी होनी चाहिए। इबादत कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी आला दर्जे की चीज है। ये रास्ता पैगंबरों का, नबियों का रास्ता है, जो रास्ता मौला ने हमें दिया है कि इसकी इबादत में तुम बैठो। ये साधुपना है, ये ऋषि मुनि का काम है, ये पैगंबरों का काम है, ये काम हमको मिला। तो अगर हमारी दुनिया अच्छी नहीं, अगर हमारे कैरेक्टर अच्छा नहीं, आमाल अच्छे नहीं, एथिक्स नहीं, मॉरलिटी नहीं, तो सुबह इबादत में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा दिल पाक होना चाहिए। मैं कभी कभी जमात में कहता हूं कि दिल एक कुर्सी है, हम वाला को कहते हैं इसमें आके बैठ, लेकिन हमने इस कुर्सी के ऊपर दुनिया रखी हुई है, माल दौलत रखी हुई है, ऐश आराम रखा हुआ है, कुर्सी खाली करो तो मौला आके बैठे ना। दुनिया की मोहब्बत निकाल के कुर्सी खाली हो जाए तो मौला इस जगह आके बैठता है। सुबह की इबादत के लिए सारा दिन इस चीज का ख्याल रहे कि ऐसा काम न करूं कि रात को परोड़िए मुझे इबादत में खलल हो गए। दसगुंद हमारी बराबर होनी चाहिए, अमाल हमारे अच्छे होने चाहिए, दुआ हम बराबर पढ़ते होंगे, किसी का बुरा न करें। ये सब चीजें हम जानते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। ए मोमिनो, जो कुछ मुझे कहना था मैंने आपको कहा, आपने बहुत अच्छी तरह मेरी बातें सुनी, मैं खुश हुआ। मैं हजरत इमाम का दाई हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मुझे उसने खुद ने मिशनरी बनने के लिए हुक्म किया। मैं अपने इस हालत में सच्चे दिल से मौला के पास आपके लिए, आपकी आल औलाद के लिए दुआ मांगता हूं। मौला हर हालत में, हर हालत में जमीन आसमान की बलाएं आफतें दूर रखे, ईमान की सलामती दे, ईमान को दुरुस्त रखे, दसवंध में पूरा रखे। सुकरीत कहते हैं अमाल को मौला उसमें पाक रखे, आल औलाद को सच्चा मोमिन बनाए, रोजी रोजगार में बरकत देवे, हक हलाल की रोजी देवे, इज्जत आबरू ज्यादा करे, तंदुरुस्ती देवे, कुटुंब कबीले में जमातों में सुख शांति सलाह सम मोहब्बत देवे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद को पूरा करे, हर रोज ईमान बढ़ता रहे, आपकी दुआएं कबूल हो गए, आप पे रहमतें ज्यादा हो गए। मौला आपको रूहानी बख्शिशें देवे, मौला हमेशा आपके ऊपर राशि देवे, सुखी आबाद रहो।